जैसे हम लोग कहते हैं बाप समान, उसी तरह ईसाई धर्म में कहते हैं क्राइस्ट लाइक, जीसस क्राइस्ट के समान। बौद्ध धर्म में कहते हैं बुद्ध समान, लाइक बुद्धा। ईसा के 100-200 वर्ष के बाद बौद्ध धर्म में एक महान योगी, भिक्षु, या जिसे ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ एशिया कहा जाता है, नागार्जुना, इस धरती पर कभी हुआ। बुद्धा लाइक, वही त्याग, वही तपस्या, वही वैराग। भिक्षु था, पात्र लेकर घूमता था और सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। जिस राज्य में जाता था वहां पर सम्मान होता था। किसी राज्य में आता है और वहां की रानी उसको देखकर बहुत आकर्षित होती है और वो देखती उसके पास एक साधारण सा पात्र है भिक्षा का। रानी को लगता है कि मैं इसे कुछ दूं और क्या दूं। उसके पास एक सोने का स्वर्ण पात्र होता है तो नागार्जुन से कहती है कि मैं तुम्हें ये पात्र देना चाहती हूँ, तुम इसे अस्वीकार न करना। पर उसे पता है नागार्जुन तो तपस्वी है, योगी है, भिक्षु है, शायद वो स्वीकार नहीं करेगा। वो कहती है कि ये लो, परंतु अंदर से इच्छा है कि ये न ले। पर नागार्जुन तुरंत ले लेता है। ठेस पहुंचती है क्योंकि गृहस्थियों की ऐसी इच्छा होती है कि जिन्होंने अपना जीवन पूर्ण अध्यात्म में दे दिया है उन्होंने भोग विलास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उन्होंने त्यागियों जैसा ही जीवन बिताना चाहिए। अगर हम उन्हें कुछ दे भी तो उन्होंने मना करना चाहिए। सेम विद मधुबन निवासी, देते तो है परंतु इच्छा होती कि ये लोग मना करें, क्योंकि इनसे इनका योगी स्टेटस जो है वो थोड़ा कम होता है। पर रानी को भी धक्का लगा, उसने तुरंत ले लिया और अपना पुराना पात्र रानी को दे दिया और निकल पड़ा। ये सारा दृश्य एक चोर ने देख लिया और चोर के मन में लालच उत्पन्न हुआ, ये योगी फकीर व्यक्ति ये क्या करेगा इस पात्र का, और वैसे भी कोई ना कोई तो इससे चुरा ही लेगा, तो क्यों ना मैं चुरा लूं। वो उसका पीछा करता है, जहां जहां नागार्जुन जा रहा है पीछे पीछे वो चोर। उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, ये कहाँ रखेगा इसको, कहाँ रहता होगा ये। शहर के बाहर देखता है नागार्जुन का जो बसेरा है वो एक टूटा फूटा सा खंडर है, जिसको ना दीवारें है ना कोई उसकी खिड़कियां है ना कोई छत है, खंडर के बीच में वो रहता है। चोर बहुत खुश हो जाता है, हिम्मत उसकी और बढ़ती है, सोचता है आज रात में ही ये काम तमाम करूंगा, क्योंकि ये कोई साधारण सा पात्र नहीं है। रानी कहती है 3 मास लगे इसको बनाने के लिए, इतने कारीगरों ने इस पर काम किया है और स्वर्ण का है। वो जब ऐसा छुप के बैठ के सोच ही रहा होता है तो नागार्जुन अंदर जाता है और बाहर से वो पात्र फेंक देता है, वो सीधा उस चोर के पैर पे आकर गिरता है। उसे तो और ही आश्चर्य लगता है, ये क्या हुआ, इसने फेंक दिया, देखा भी नहीं कुछ भी नहीं, इतना मूल्यवान पात्र। उसको लगता है अब काम हो गया चलो, परंतु फिर भी मन में कुछ खींच होती है, ये कौन सा आदमी है, ऐसा क्यों किया। जाके कहता है कि मैं एक चोर हूं और इस पात्र को ही चुराने आया था और आपका पीछा करते करते यहां तक पहुंचा था। नागार्जुन कहता है इसलिए तो मैंने तुम्हें दे दिया, मैं क्या करूं इस पात्र का। चोर कहता आखिर ये क्या है, मतलब आपने ऐसा क्यों किया। वो कहता है मुझे आवश्यकता ही नहीं, इतना उसकी शांति, उसका मौन, उसका शांत स्वभाव, वो चोर को बहुत आकर्षण होता है उससे। वो कहता है ये चलो इस पात्र की बात छोड़ दो, मुझे एक प्रश्न आपसे पूछना है कि मुझे भी आप जैसा बनना है, एकदम रॉयल, जैसे आप दिखते हो ना, जिसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं, ऐसे बनना है मुझे, मुझे रोज रोज चोरी करके थक गया हूं, और जिस भी आध्यात्मिक पुरुष के पास जाता हूं, जिस भी गुरु साधु संत के पास जाता हूं, वो यही कहते हैं अगर तुम्हें आगे बढ़ना है चोरी छोड़नी पड़ेगी, वो मैं नहीं कर सकता, ये छोड़कर और कुछ करना है और आपके जैसा अगर बनना है वो बताओ। तो कहता है वो नागार्जुन कहते हैं तुम जिनके पास गए थे वो साधु थे ही नहीं, असाधु थे, मेरे पास आते तो मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं कहता। उसकी हिम्मत बढ़ती है, तो मैं चोरी चालू रखूं। वो कहता है हाँ बिल्कुल चालू रखो, पर एक बात याद रखना, रोज चोरी करने जाओ परंतु जो भी करो संपूर्ण होश में करना, 1 हफ्ते तक, 7 दिन तक जब भी चोरी करने जाओ तो सोचना मैं अभी चोरी करने जा रहा हूं, चोरी करते समय भी सोचना कि मैं चोरी कर रहा हूं, चोरी का माल लेते समय जाते समय भी सोचना कि मैं चोरी का माल लेकर चोरी कर निकल रहा हूं, मैं चोर हूं। वो कहते पर चोरी तो करूं ना। वो कहते चोरी तो चालू रखो, चोरी तो रोकनी नहीं है तुमको। वो कहते हैं ठीक है, और 1 हफ्ते के बाद वो आता है, बोलता है तुमने मुझे बहुत धोखा दिया, एक भी चोरी मैं कर नहीं सका, जब भी करने गया तो आपने केवल एक ही शर्त रखी थी, होश, मैं चोर हूं, मैं चोरी करने जा रहा हूं, बस वहीं रुक गया। कभी कभी हिम्मत और आगे बढ़ी, चोरी की भी पर मैं चोरी कर रहा हूं और रुक गया, एक बार कर ली और जा रहा था लौटने, मैं चोर हूं, चोरी का सामान लेके जा रहा था, वहीं रुक गया। होश में यह काम हो ही नहीं सकता, चोरी के लिए बेहोशी चाहिए, पाप के लिए बेहोशी चाहिए, होश में पाप हो नहीं सकता। वो कहता है मैं तो हार गया, अभी मैं चोरी करना ही मेरे लिए असंभव हो गया है, ऐसी रिकॉर्डिंग हो गई है अंदर सेटिंग कि अभी चोरी ही मुश्किल हो गई। ये चोर बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षु बन जाता है, अरिहंत पद को प्राप्त करता है नागार्जुन के सानिध्य में। तो ये साधना है होश की, ये साधना है जागरण की, ये साधना है निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति में रहने की, ये साधना है पुराना कुछ भी जगे ना आज सुबह की साकार मुरली वरदान, अपने आप वो समाधि सी अवस्था आ जाए, निरंतर जागरण की अवस्था। कल भी कहा था सेटिंग यहां कर दो जागे रहने की। जागना अर्थात आत्माभिमान, मूर्छा अर्थात देह अभिमान। तो ये सारी साधना ही किसकी है? जागरण की। और जागरण की इस साधना का आज का अगला सूत्र ब्रह्मासन। तो सबसे पहला हमने देखा ब्रह्म मुहूर्त, दूसरा देखा ब्रह्मचर्य, तीसरा देखा ब्रह्मास्त्र, चौथा देखा ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, पांचवा ब्रह्मपुत्र, छठवा ब्रह्मा ब्रह्मांड, फिर ब्रह्मा के वाक्य, अगला ब्रह्म विहार, अगला ब्रह्मा की संतान के पहले भी और कुछ, हाँ ब्रह्मा ब्रह्मास्त्र हो गया, तो ब्रह्मा की संतान कितने हो गए? आज का नौवा या दसवा, तो नौवा कौन सा है? और एक ब्रह्मा की संतान। तो हम सब कौन है ब्रह्मा की संतान में? कल हमने देखा था वो चतुर कुमार, उनके वो सारे गुण, एक गुण बताना भूल गया, उनका भोजन, वो जो भगवान का गुणगान करते वही उनका भोजन है। सनत कुमार, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। आज हम देखेंगे ब्रह्माचरित मानस में ब्रह्मासन। ब्रह्मा का आसन कौन सा है? ब्रह्मा का आसन कौन सा है? कमल, कमल पुष्प। और किस किस का आसन है ये? लक्ष्मी का आसन है। और किसका आसन है? सरस्वती का भी आसन है। तो इस ब्रह्मासन की आज 16 बातें देखेंगे। सबसे पहले तो कमल, कितने नाम है कमल के? कमल, अरविंद, पंकज, नीरज, जलज, पद्म और सतदल, लोटस और नीरज, नीरज सरोज, नीरज सरोज, अरविंद और पदम, पदम फूल और अलग अलग देशों में भी अलग अलग नाम है, नीलोफर, इंडियन बीन, बीन लोटस, वाटर लिली, कई सारे अलग अलग नाम अलग अलग देशों में है। तो कमल एक ऐसा फूल है जिसके सबसे ज्यादा नाम है अगर देखा जाए तो। बहुत सारे आ गए। तो पंकरूह, सिरसिज, सरोज, सरसिरूह, जलज, जलजात, वारिज, अंभोरूह, अंबुज, अंबोज, अंब, अरविंद, नलिन, उत्पल, पुंडरिक, ताम्रस, इंदिवर, कुवले, वनज, बहुत सारे नाम हैं। पंकज अर्थात पंक अर्थात कीचड़, जो कीचड़ में खिलता है, पंकज। नीरज अर्थात नीर, जो पानी में खिलता है, कमल। तो कमल ये आसन दिखाया हुआ है। सबसे पहला तो ढेर सारे इसके नाम। दूसरी बात, दो तीन अव्यक्त मुरलियां हैं जो कि कमल पर चली हुई है। एक अव्यक्त वाणी है बाबा की, जिसमें बाबा ने कहा है स्थिति के ऊपर, कमल पुष्प समान स्थिति, अर्थात कमल पुष्प समान स्थिति ही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन है। 12 जून 1977। तो दूसरी बात है स्थिति, कमल पुष्प क्या डिनोट करता है या क्या इंगित करता है? स्थिति, कमल पुष्प समान स्थिति अर्थात सदा हर कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करते हुए भी इंद्रियों के आकर्षण से न्यारे और प्यारे। कर्म कर रहे परंतु इंद्रियों का आकर्षण नहीं है। इस मुरली में बाबा ने कहा है एक जगह पर, नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, ये तीन चीज है, चरण कमल, मुख कमल अर्थात डिटैच्ड, हम बोलते हैं और बोलने में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, मैंने ये बोला और मैंने जो बोला वही राइट है, बोलने में भी डिटैचमेंट। मुख कमल, हस्त कमल, कर्म किया और कर्म करते ही डिटैच्ड। लोगों को बहुत चीजें याद रखते हैं, कल हमने कितना अच्छा ये किया, हम यहाँ घूमने गए, हमने वो किया, कितना मजा आया, कल कितनी अच्छी तपस्या की, वो कल था, स्टॉप, वो खत्म हो गया है, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, कल हमने ना बहुत अच्छा सबने मिलके चिंतन किया, अरे किया होगा, वो कल किया ना, वो रहेगा, वो अपने मन के अंदर, और उसी का वर्णन करते रहते हैं कईयों के सामने कि कल हमने मधुबन में हमने 3 दिन बहुत अच्छी भट्टी की, बहुत अच्छी भट्टी की, कितने लोगों को सुनाते रहते, सुनाने की क्या आवश्यकता है, की ना, तो मन में वो यादगार बन के रह जाए और शक्ति बन जाए। अध्यात्म के अनुभव तुरंत यदि सुना दिए जाते हैं तो शक्ति कम हो जाती है। अभी अभी सुदीप अमृत वेला बाबा का कोई शक्तिशाली अनुभव हुआ और आए और सबको सुनाते फिरे दिन भर, कल से होना बंद, क्योंकि अनुभव सुनाते सुनाते व्यक्ति क्या करता है, पास्ट इन्वेंशन करता है। ये शब्द पता है, पास्ट इन्वेंशन, पास्ट इन्वेंशन एक शब्द है अंग्रेजी में। जैसे किसी को अनुभव हुआ बाबा ने वरदानी हाथ रख दिया, पर वो जब दूसरों को समझाएगा तो उसमें 3-4 अपनी बातें ऐड कर देगा जो हुए ही नहीं, विस्तार के साथ इन्वेंट करेगा खोज, और उसमें 3-4 चीजें और एक्स्ट्रा ऐड करके फिर सुनाएगा, तेल मसाला लगा के सब, उसको इसको कहते पास्ट। और इसको वो ये करता है इसलिए नहीं कि दूसरी उसकी स्तुति करे, अपने आप होता है, वो अपने अनुभव को अच्छा अच्छा सजा सजा कर पेश करना चाहता है, परोसना चाहता है दूसरों के सामने, वो ये एक धोखा है पास्ट इन्वेंशन का। इसलिए अपने जो सूक्ष्म अनुभव है वो गुप्त ही रखने चाहिए, और हर एक को रोज कुछ ना कुछ तो अनुभव होते ही है, हर अमृत वेला ऐसे ही नहीं जाता है, बहुत सूक्ष्म, पर हमें कई बार पता चलता है, कई बार पता नहीं चलता है, और जिस दिन पता चलता है हमको लगता है पता नहीं क्या हो गया, और तुरंत जाके सुना, माइक मिल जाए तो बस फिर तो छोड़ेंगे नहीं, पूरा सुना देंगे। और इसमें और एक धोखा होता है, दूसरों के अनुभव को हम अपना अनुभव बना के सुनाते, जैसे किसी को सुना कि उसको बाबा ने एकदम मदद कर दी, तो हम सुनाएंगे मुझे बाबा ने मदद की, मुझे हुई नहीं है, उसका चुराया है, ये भी एक धोखा है इसमें, अनुभव की चोरी। कॉपीराइट तो है नहीं है, तो ब्राह्मण एक दूसरे के चुरा लेते हैं अनुभव और ऐसे बताते हैं जैसे ये मेरा है, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, बाबा को याद किया, एकदम हाथ रख दिया, एकदम दर्द गायब हो गया, कुटिया में बैठते ही, ये किसी का सुना, और फिर हमने देखा पब्लिक तो दूसरी है, वहां दूसरी थी, अब इनको तो पता नहीं वहां का तो इसे अपना अनुभव सुना, ये अनुभव की चोरी इसलिए अनुभव जो गहरे है उन्हें गुप्त रखा जाए, समय आएगा अपने आप सुनाने का अवसर मिलेगा। तो सबसे पहली, दूसरी बात है स्थिति, तो कैसी स्थिति हो, कर्मेंद्रियों का आकर्षण नहीं, कर्म किया डिटैच्ड, कमल नयन, ये नयन जो है कमल नयन, नयन कमल, गंदगी नहीं देख सकते, चरण कमल, ऐसे स्थानों पर जा ही नहीं सकते जहां गंदगी हो। कल भी सुनाया 4 कुमार जो है सनकादिक ऋषि, वो केवल उन्हीं स्थानों पर जाते हैं जहां पर सत्संग हो, जहाँ भगवान की महिमा हो रही है। ऐसे स्थानों पर जाते ही नहीं जहाँ झगमोई झरमोई व्यर्थ ये सब चल रहा है, सुनना ही नहीं है ऐसी बातें। एक बार अंदर गई कि फिर चिंतन चलता है उसका, क्योंकि हर एक कोई ना कोई किसी ना किसी के ग्लानि की बात तो सुनाई गई, और किसके ग्लानि की बात सुनाएगा, जिसको हम मानते हैं उस व्यक्ति के ग्लानि की बात, ताकि हमारा विश्वास और फेथ उसमें कम हो जाए। तो कमल क्या दर्शाता है? स्थिति। तीसरा, एक दूसरी मुरली है जिसमें बाबा ने कमल की एक दूसरी बात बताई है। ये मुरली है 14.2.78 की। जैसे पानी नीचे होता है कमल ऊपर होता है, इसी प्रकार परिस्थितियां नीचे हम ऊपर, नीचे की बात नीचे। कमल का तीसरा अर्थ क्या है कि कमल अर्थात ऊपर और पानी नीचे, परिस्थिति नीचे हम ऊपर। चाहे कैसी भी परिस्थिति है हम हमेशा ऊपर रहेंगे, परिस्थितियां नीचे रहेगी, क्योंकि हम कमल है ऊपर है। निर्लिप्त की बात नहीं है यहाँ पर, ऊपर और नीचे की बात है। हम ऊपर है या नीचे, कोई भी परिस्थिति आने दो, वो हमसे नीचे ही है। हम हर परिस्थिति से बड़ा मैं हूं, बहुत अच्छा समान है। हर समस्या से बड़ा मैं हूं, वो नीचे हम ऊपर। ये परिस्थिति मुझे प्रभावित नहीं कर सकती, मुझे दुखी नहीं कर सकती, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो उसमें से हम पार निकल जाना है। और कोई भी परिस्थिति लंबा समय नहीं टिकती, थोड़े समय रहेगी और चली जाएगी। ये परिस्थिति का बहुत अच्छा गुण है, टिकती नहीं है, वो अनित्य है परिस्थिति। किसी ने कुछ कह दिया, बोल दिया, अब हमारे ऊपर है। वो वैसा ही फिर से नहीं बोलेगा, वो किसी दूसरी परिस्थिति में बोलेगा, दूसरे शब्द होंगे, वही सीन ड्रामा का फिर से रिपीट नहीं होता है। इसलिए स्थिर ऊपर, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हमें प्रभावित होना ही नहीं है। हम ऊपर है, पानी नीचे। चौथा, एक ये दूसरी उसी मुरली में बाबा ने और जगह कहा है, इसलिए ज्यादा नहीं सोचो, प्लान बनाओ, लेकिन कमल फूल समान हल्का रहो। तो कमल फूल अर्थात हल्का, लाइट, ज्यादा सोचना नहीं है। ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी बीमारी है, ओवर थिंकिंग, एक्स्ट्रा थिंकिंग। छोटी सी बात हो गई उसको पकड़ के व्यक्ति सोचते रहता है, सोचते रहता है, सोचते रहता है, दिन रात सोचते रहता है, जबकि सामने वाले व्यक्ति ने ऐसे मजाक में कह दिया। एक शब्द है इंग्लिश में, उसको कहते हैं बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग, आपके शरीर के बारे में किसी ने कुछ कह दिया, क्या हो गया, काले पड़ गए हो तुम, अब उसने बोल के चला गया। हम सोच रहे थे आज तो हम आईने में देख रहे थे ज्यादा गोरे दिख रहे हैं, योगी जैसे एकदम तेज हो रहा है, और कोई आके कहता है काले दिख रहे हो। बस पकड़ लिया उसकी बात, अब तक उसने जो कुछ अच्छा किया होगा हमारे साथ वो सब भूल गया, क्योंकि हमारे शरीर पर कमेंट किया है उसने, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। छोटी सी बात है उसको पकड़ के बस सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे। ये बॉडी शेमिंग बहुत बड़ा टॉपिक है आज के युग में, युवक कॉलेजेस में बॉडी शेमिंग को बहुत ये लिया जाता है। कोई मोटा है तो उसको चिड़ा चिड़ा के लोग ये कर देते हैं, तो उसको बहुत बुरा लगता है अंदर से, बॉडी शेमिंग इसको कहते हैं। कोई पतला है तो उसको वैसा चिड़ाते, किसी का कोई अंग में विकृति है उसको उस रीति, किसी के बाल ही नहीं है चिड़ाते हैं लोग। ये जो बॉडी शेमिंग है इसको भी लाइटली लेना है। अगर हमें कोई ऐसा बोलता भी है तो भी तुम काले बहुत हो, अगर कोई कहे तुम दांत नहीं साफ करते तो दुर्गंध आती है बॉडी शेमिंग एक सेपरेट टॉपिक है, बॉडी शेमिंग। तो इन बातों को क्या करना है, हल्का लेना है, ठीक है, उसको मजाक, अपने ऊपर ही हंस लेना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा अपने बारे में बहुत ऊंचा ओपिनियन होता है, और कोई का अगर कम हो तो हम उसे सहन नहीं कर पाते। तो कमल अर्थात हल्का, लाइट, ओवर थिंकिंग नहीं। चीजें आ रही है, चीजें जा रही है, किसी ने कुछ बोल दिया ठीक है, उसको याद भी नहीं उसने हमें ये बोला, वो तो बोल के निकल गया, और हम दिन रात सोच रहे उसने ऐसा क्यों बोला, किसी ने उसको बताया होगा, उसने ऐसे ही मजाक में बोल दिया बस। कॉलेज में या स्कूल में बच्चे मजाक करते हैं, याद रखते हैं क्या? भूल जाते हैं, दूसरे दिन भूल जाते, वापस खेलने लगते हैं साथ में। यहाँ हमारे पास ज्ञान ज़्यादा है, और ज़्यादा ज्ञान की वजह से हम ज़्यादा याद रखते हैं और ज़्यादा दुखी भी होते इसके लिए ज्ञान को थोड़ा कम करना है थोड़े कम ज्ञानी भव, ज़्यादा ज्ञान ज़्यादा समझ की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो चीज़ें होगी, चीज़ें जाएगी, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, दुखी नहीं होना है। कड़कड़ाती धूप होती है, एक बस स्टैंड पर बहुत सारे लोग खड़े हुए, पसीना आ रहा है सबको, बस का इंतज़ार कर रहे, कब बस आएगी पता नहीं, इतनी धूप इतनी धूप। एक भिखारी आता है, हर एक से एक रुपया लेता है, दो रुपये मांगता है, सबको बेचारे पर दया आ जाती है, इतनी धूप में बेचारा भीख मांग रहा है, सबसे पैसे लेता है, ऑटो रिक्शा में बैठ के चला जाता है लाइफ इज अ जोक, कॉमेडी, यहाँ हर पल कुछ ना कुछ कॉमेडी हो रही है। कार्टून शो है बाबा ने कहा, ये कार्टून शो है, ये मिकी माउस का प्ले है, ये कॉमेडी शो है, ये खेल है, नाटक हो रहा है, इसमें बहुत अजीब अजीब चीजें होती रहती है, हंसना है आप चीजों पर, सीरियसली अगर लिए ना तो दुखी होना पड़ेगा बस, प्रतिपल दुख, एकदम सीरियस एटीट्यूड। तो सदा खुश लाइट, तो सबसे पहले बताया नाम, एक एक नाम पर योग किया जा सकता है, उसमें स्थित हो जाना, नाम कमल आसन धारी हूं, ये संकल्प, मैं कहां बैठा हूं, कमल आसन, मैं कैसे जहां चल रहा हूं वहां क्या है, कमल। तो आज सारे दिन भर ये अभ्यास करना। महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो जन्मते ही चलने लगे ऐसा दिखाया, और जहां जहां कदम रखा वहां पर एक पदम, एक कमल पुष्प। तो ये एक बहुत अच्छा अभ्यास है, जहां मैं कदम रख रहा हूं वहां क्या है, कमल का फूल। तो सारे दिन भर आज इधर उधर पाव रखना ही मत, केवल कमल पर, इधर उधर पाव रखा तो पाव फिसल जाएगा। तो पहला नाम, एक एक नाम लेना, उस पर काम करना। दूसरा स्थिति, इंद्रियों का आकर्षण ना हो, इसमें आंखें कहीं आकर्षित ना हो, कान कहीं आकर्षित ना हो, जिह्वा का कोई आकर्षण ना हो, रस फंसा देता है, ये चीज मुझे अच्छी लगी अब यही चाहिए, कोई भी चीज का एडिक्शन ना हो। खाने का एक सिंपल प्रिंसिपल है, ऐसी चीजें लो खाओ अंदर कि जिसका एडिक्शन ना हो, एक बार खा लिया अब उसकी फिर याद ना है। और किसी को तो ऐसा बिल्कुल मत बोलना कि आपने ये बनाया ना बहुत अच्छा था, बस गए फिर वो पकड़ पकड़ के आपको वही खिलाएंगे। पत्नी अपने पति से पूछती है, आज तुमको क्या हो गया, मंडे को तुमको भिंडी की सब्जी खिलाई तुमको बहुत अच्छी लगी, ट्यूसडे को खिलाई तब भी अच्छी लगी, वेनेसडे को खिलाई तब अच्छी लगी, थर्सडे को खिलाई तब, फ्राइडे को, सैटरडे को क्या हो गया तुमको आज इतने दिन तो अच्छी लगी, आज क्या हुआ तो एडिक्शन ना हो, नहीं तो ये जो है मिस करता है चीज को कि ये मुझे फिर चाहिए, वही वाली चीज चाहिए, भूसी के हाथ का बना हुआ चाहिए, वहां का वो बहुत अच्छा है, वो आ जाए तो वो हमारे लिए वो नहीं लाए, उनको लिए उनके लिए भी बंधन, हमारे लिए भी बंधन। इसलिए आशीष भाई कहीं जाओ तो चुपचाप खा के निकल के आ जाओ, ये मत कह देना ये मुझे ये बहुत बढ़िया बना, तो वो समझेंगे इसको ये पसंद आ गया। तो जब भी जाए मधुबन तो इनके लिए लेके जाना चाहिए तो बंधन बन गया। तो ये हो गया तीसरा, ये मुरलियों से है। अब आगे चलते हैं चौथा, अच्छा चौथा लाइट, हल्का रहना। पांचवा कमल फूल जो है ये अष्टमंगल कहा जाता है, इसे बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में अष्टमंगल चिन्ह है, आठ मंगलकारी चिन्ह बौद्ध धर्म में मुख्य रूप से, हिंदू धर्म से भी बौद्ध धर्म में कमल का महत्व ज्यादा है। अष्टमंगल तो कमल अर्थात मंगलकारी। कमल किसका प्रतीक है? केवल एक ही चीज नहीं है कमल की, जो हमने हमें पता है बहुत सारी चीजें है कमल के बारे में। तो कमल कैसा है? अष्टमंगल, आठ मंगल, वो कौन से दूसरे सात है वो आप ढूंढो अष्टमंगल में। तो बौद्ध धर्म इवन हिंदू धर्म में जितने चिन्ह है, एक चिन्ह है स्वस्तिक, ये है एक मंगलकारी चिन्ह। और मंगलकारी चिन्ह कौन कौन से? ओम और कलश, कलश मंगलकारी चिन्ह है। और नारियल, नारियल और नारी चरण कमल वो निकालते हैं ना लक्ष्मी के चिन्ह, ये सब मंगलकारी चिन्ह है। वैसे कमल भी एक मंगल, अष्ट मंगलकारी चिन्हों में से एक है। तो कमल समान जीवन अर्थात मंगलकारी जीवन, जहां हम जाए आत्माओं का हमसे मंगल हो, किसी को भी हमसे किसी का भी अहित ना हो, कोई भी आहत ना हो हमसे, किसी कोई भी हर्ट ना हो, इसका ध्यान रखना। हमारी कोई भी बात से, चाहे संकल्प से, बोल से, कर्म से, कोई भी हर्ट ना हो, कोई भी आहत ना हो, जितना हो सके। हाँ, कुछ परिस्थितियां होगी जो बिना हमारे कुछ किए भी लोग हमसे दुखी है, वो 5% तो रहेंगे ही रहेंगे। हमने सब कुछ कर लिया उनको सुखी करने का, परंतु फिर भी उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है कि हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, चाहे तुम कुछ भी करो, हमारे पैर पड़ो, पर तुम्हें संतुष्टता का सर्टिफिकेट हम नहीं देंगे। उनका क्या करें, वो दुखी है अपने संस्कारों की वजह से, उनको छोड़ दो। इसीलिए कमल अर्थात मंगलकारी। अगला, कमल अर्थात सौंदर्य। कमल किसका प्रतीक है? सौंदर्य का, ब्यूटी। और ब्यूटी भी कौन सी? दैवी सौंदर्य, डिवाइन ब्यूटी का प्रतीक है, डिवाइन ब्यूटी। सारे अध्यात्म जितने साहित्य है विश्व भर में, हर जगह कमल का महत्व बताया है, चाहे इजिप्ट ले लो, अलग अलग संस्कृतियां ले लो, हर संस्कृति में, हर धर्म में कमल है कहीं ना कहीं। तो कमल अर्थात डिवाइन ब्यूटी। अगला, कमल अर्थात कलर। कितने प्रकार के, कितने रंग के कमल होते हैं? एक होता है सफेद, एक होता है पिंक, एक होता है ब्लू, एक होता है पर्पल, येलो, व्हाइट, तो पहला ही व्हाइट बताया, और येलो। अलग अलग कलर के कमल होते हैं। सबसे पहला व्हाइट अर्थात प्यूरिटी, उसमें भी ढेर सारे वेरिएशन है। कुछ तो होंगे, कुछ होते भी नहीं, केवल उनकी यादगारें हैं बौद्ध धर्म में स्पेसिफिक। पर्पल, पर्पल अर्थात इसोटेरिक, जिसको कहते हैं रहस्यमयी, वो पर्पल कलर इंडिकेट करता है। ब्लू विक्ट्री, विजय। येलो, ब्लू कमल अर्थात विजय, सत्य की असत्य पर विजय। वैसे ही पर्पल कलर होता है, पर्पल कलर भी बोधि अवस्था को इंडिकेट करता है। बोधि अर्थात पिंक, पर्पल एनलाइटनमेंट, संपूर्ण ज्ञान की जो बुद्ध की अवस्था है वो अवस्था है। उसी तरह ऐसे अलग अलग कलर, बहुत सारे कलर और उन क्या क्या होता है ये दिया गया है और एक जगह पर। तो हम भी केवल एक ही कलर का कमल अपनी आंखों के सामने नहीं लाना है, हर दिन योग में अलग अलग कलर के कमल पर बैठना है। कभी ब्लू कलर के ऊपर, कभी पिंक, कभी व्हाइट। सरस्वती और ब्रह्मा ये किस में बैठते हैं? व्हाइट, तो व्हाइट कमल, उसमें मैं बैठा हूं, खड़ा हूं। अलग अलग ड्रिल करनी है, सूक्ष्म वतन में ड्रिल की जा सकती है। हम भी खड़े, वो भी खड़ा, हम भी बैठे, वो भी बैठा। अभी इंग्लिश में पढ़ रहे थे कि बाबा ने कहा कि कमल पुष्प पर बैठ जाओ और तुम्हारे मस्तक से शक्तियों की किरणें फैलाओ, आंखों से, नैनों से और मस्तक से शक्तियों की किरणें फैल रही है सब जगह पर। कितना अच्छा दृश्य है ये, मैं कमल पुष्प पर बैठा हूं। और सामने वालों को, दूसरों को भी किस पर देखना है? वो भी कमल पुष्प पर बैठे हुए, मैं भी कमल पुष्प पर, वो भी कमल पुष्प पर चल रहा हूं, तो पैर कहाँ है? कमल पुष्प पर रखे हुए। अपने ऑफिस में नहीं बैठे हो, कहाँ बैठे हो? चेयर पर नहीं बैठे हो, कमल पुष्प पर बैठे हो। हल्का है, कमर पुष्प हूं पर हूं मतलब परिस्थितियां नीचे, मैं ऊपर। कमल पुष्प पर हूं अर्थात मैं हल्का, कोई भी चीज मुझे भारी नहीं कर सकती। और हमारे जीवन में सारी परिस्थितियां ऐसी आती है जो भारी करती है। आने दो हल्का रहने का, ये एक अभ्यास है हल्का रहना, हर परिस्थिति में हल्का रहना, उसको एक कॉमेडी की तरह बना देना। जो भी हो रहा है ना, एक और एक अभ्यास है, उसको एनिमेशन क्रिएट करना उसका। जैसे आप बैठे, किसी ने आके अपमान कर दिया और वो चला गया, हम दुखी होके बैठे, अभी रुको, अब इसकी एक मूवी क्रिएट करो, कॉमेडी मूवी एनिमेटेड, उसको देखो। वही देखना नहीं है, ऐसा बड़ा मुंह देखो उसका, ये बड़ी बड़ी आंखें, और हम ऐसे छोटे से। वो आया, इसको कुछ कर दिया और वो चला गया। इसको क्रिएट करो मूवी, टॉम एंड जेरी, मिकी माउस, इस तरह की। तो ये थोड़ा अपने आप को हल्का करना है, नहीं तो दिन भर में 10 बातें होती है, शाम तक तो बस रोने की नौबत है। इतनी बातें होती है हर एक के जीवन में। उसके बाद क्या बताया? कलर। उसके बाद में अगला है जो बाबा कहते हैं डिटैचमेंट। कमल की पंखुड़ियों पर पानी डालो, वो बह जाता है। डिटैच्ड है कमल, कोई भी चीज में लिप्त नहीं होता है वो। कोई भी स्थान हमें आकर्षित ना करे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु। किसी ने पेन दे दिया, यूज कर लिया, वो आए उसका पेन मांगे, ले लो जाओ। डिटैच्ड, जब तक हमारे पास है उसका ख्याल रखेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, जब वो चला गया, गया तो गया। वैसी चीजें जब खो जाती है तो लोग कितना दुखी होते हैं ना दुखी। माउंट अबू से जा रहे हैं, 3 बैग थी, एक बैग में पूरी चीजें खरीद ली यहाँ की, माउंट की राजस्थानी, और जाते जाते ट्रेन में बैग चोरी हो गई, क्या करोगे? बाबा मिलन, चप्पल बाहर रखी थी, बीच में बाहर आए, चप्पल ही नहीं है, सारी खुशी चप्पल के साथ खत्म। चीजें जब गुम हो जाती है तब क्या करना चाहिए? ढूंढो उसको, मिली तो ठीक, नहीं तो छोड़ो, गई तो गई, उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? किसी ने चोरी कर लिया या कोई गुम हो गई चीज, गई तो गई, अब क्या करें? दुखी होते रहे। जिसको मिली अब उसका कल्याण हो जाए, या हमने कोई चीज कहीं रख दी और आ गए, अब कौन लेके जान, वापस उस स्थान पे तो जाने वाले हैं नहीं, छोड़ दिए, गई तो गई। वस्तुएं महत्वपूर्ण नहीं है, हाँ उनका ध्यान रखना है, उनका ख्याल करना है, वो है, पर सब कुछ करने के बाद में भी ऐसा हो गया तो क्या कर सकते हैं? गई तो गई। माता है बच्चों को वो अनाउंसमेंट तो होती है ना स्टेज पर, अनाउंसमेंट होती है ना स्टेज पर, ये अपनी मम्मी को ढूंढ रहा है, डैडी को ढूंढ रहा है। तो चीजें है, चीजें नहीं है, गई तो गई, उसके बारे में दुख नहीं करना है। पर्स अब भी खरीदी थी, वहां रख दी, बाद में जाके देखा है ही नहीं, क्या करें? बस वही सोचना है। जैसे एक घर में बच्चा पैदा होता है, उसके हार्ट में छेद है, 5वें दिन डॉक्टर ने कहा इसके हार्ट में छेद है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। माँ बाप गरीब है, पैसे बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ वहां से कर्जा लेते हैं, क्योंकि पहला बच्चा है, उसको बचाना ही है किसी भी हालत में, बड़ा हार्ट सर्जरी करनी है, इतने सारे पैसे यहाँ से उधार, वहां से उधार, दिन रात काम करते हैं दोनों, कुछ दिनों में पैसे जमा हो जाते हैं 5 लाख, ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के 5वें दिन बच्चा मर जाता है। किस लिए आया था? पैसे लेने के लिए वापस आया था, इसलिए यहाँ पर बड़ा सूक्ष्म हिसाब किताब चल रहा है। तो कमल पुष्प अर्थात कहाँ थे हम? डिटैच्ड, जैसे न्यारा होता है वो उसी तरह डिटैच्ड। अगला, कमल पुष्प अर्थात रिबर्थ। रिबर्थ को डिनोट करता है कमल, रिबर्थ अर्थात पुनर्जन्म। क्यों? क्योंकि कमल रात में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, दिन में फिर से खिलता है, इसीलिए उसकी तुलना किससे की गई, पुनर्जन्म से। वो हमें दिखाता है कि चीजें बंद होती है फिर खुल जाती है, मृत्यु जन्म मृत्यु ये होते रहेगा, इससे प्रभावित नहीं होना है, ये नश्वरता का प्रतीक है। रात में बंद हो जाता है फिर खिलता है, बंद होता है फिर खिलता है, तो ये संसार भी ऐसा ही है। यहां पर आत्माएं आ रही है, शरीर धारण कर रही है, शरीर छोड़कर जा रही है, किस किस के लिए दुख करें हम, आज कोई है कल नहीं है, रिबर्थ। अगला, कमल अर्थात सूरज, सन। जैसे सूरज दिन में होता है रात में नहीं होता है, उसी तरह कमल भी क्या है, रात में बंद हो जाता है और दिन में खिला रहता है, सूरज की तरफ देखता है। इसीलिए हमें भी क्या करना है, ये बंद होना ये खिलना, बंद होना खिलना, ये चालू रहेगा, ये संसार के नियम है, ये सब अनित्य भाव को दर्शाते हैं सारी बातें। अगला है फोल्डिंग अनफोल्डिंग। कमल क्या करता है, बंद होता है फिर खुलता है, बंद अर्थात अज्ञान, खुलना अर्थात ज्ञान, ये भी चेतना की अवस्था है। ये कमल बंद हो गया, पर वही जो बंद है वही एक दिन खिलेगा, और जैसे जैसे खिलेगा नए नए रहस्य नए नए सत्य प्रकट होंगे। इसके लिए कमल का खिलना और कमल का बंद होना ये भी किसको दर्शाता है, चेतना की फोल्डिंग अनफोल्डिंग, अनफोल्डिंग ऑफ सोल। अगला, कमल का खिलना अर्थात एक्सपांशन ऑफ द सोल, आत्मा का विस्तार को प्राप्त होना अर्थात कमल का खिलना, आत्मा के विस्तार को प्राप्त होना अर्थात अंडरस्टैंडिंग बढ़ना, ज्ञान बढ़ना, प्रकाश बढ़ना, इल्यूमिनेशन की जो स्टेज है, चेतना की जागरण की जो अवस्था है वो बढ़ना, केवल ये जो एक्सपांशन है, इस पर बौद्धिस्ट लिटरेचर में बहुत सारी बातें लिखी गई है कि कैसे बुद्ध जो था उसका जो कमल है वो एक्सपांड होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया, बड़ा बड़ा होता गया, वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तपस्या कर रहे, और वो जो कमल था वो खुलते गया, एक्सपांशन ऑफ सोल खिलती गई खिलती गई, और एक ऐसी अवस्था में आई कि वहां उनका सारा ज्ञान नष्ट हो गया। मारा ने फिर कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर पाई मारा उनको। बौद्ध धर्म में माया को मारा कहा जाता है, क्रिश्चियनिटी में सैटन कहा जाता है, इस्लाम में शैतान कहा जाता है, अलग अलग धर्मों में निगेटिव फोर्स के लिए इंग यांग अलग अलग शब्द है। तो एक्सपांशन ऑफ सोल। अगला, कमल अर्थात चक्र। हमारे शरीर में सूक्ष्म शरीर में क्या है, चक्र, बहुत सारे 7 चक्र, और उसमें भी और आगे जाओ तो इससे भी ज्यादा चक्र, या फिर एक एक ज्वाइंट ही एक एक चक्र है, ये जो है ना, एक एक ज्वाइंट एक एक चक्र है, और सहस्त्रार चक्र, इधर सहस्त्रार 1000 पेटल जिसकी 1000 पंखुड़ियां है। तो ये चक्र भी क्या दिखाते हैं, ये भी लोटस, सब की तुलना लोटस से की गई। तो लोटस ये भी एक योग है, लोटस मेडिटेशन, जिसमें हम देखते हैं नीचे से मूलाधार चक्र खिला, फिर ऊपर फिर ऊपर फिर एक 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 चक्र खुलता गया, और जो एनर्जी का फ्लो है वो एकदम स्टैब्लिश होगा, जो भी ब्लॉकेजेस थे, जब तक ये सूक्ष्म शरीर के ये सारे नाड़िया इड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना 72,000 नाड़िया है, ये सब खुल जाए तो व्यक्ति एकदम संबोधि अवस्था एनलाइटेंड स्टेज को प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। हमारी भाषा में इसको क्या कहेंगे, ये सूक्ष्म शरीर में नाड़ियां बताए हैं, वास्तव में ये चक्र है नहीं है, इसके कोई लेना देना नहीं है, सारे चक्र यही है, क्योंकि उसी लिटरेचर में उन्होंने ये भी कहा है चक्र एक ही है, उसके ये पार्ट्स है। तो ये सब चक्र क्या है, जैसे सबसे लोएस्ट चक्र जो है, फिर उसके ऊपर का, फिर उसके ऊपर का, ये 3 चक्र जो है ये लोएस्ट लेवल में ऑपरेट करने वाले लोग है, एक है भोजन का, एक है काम विकार का, एक है सत्ता का। तो ये तीनों एकदम सेम है, भोजन काम विकार और सत्ता, तीनों में एक क्या कहते हैं उसको, उसमें एक तलब है, उसमें क्रेविंग है, एडिक्शन है। एक बार एडिक्ट हो गया ना व्यक्ति सत्ता का, तो उसको वही चाहिए, इसलिए एक बार तो जीतता है इलेक्शन में, फिर खड़ा होता है। सत्ता में बहुत ये है, जैसा भोजन में है और जैसे काम विकार में है, वैसे ये तीनों भी एक जैसे ही है, तीनों के मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, तीनों नीचे के चक्र। कई लोग बस इन्हीं चक्रों पर जी रहे, आगे के चक्रों का उनको पता ही नहीं। ये काम विकार कोई प्रेम समझते हैं, वो काम सारा जीवन इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते फिरते। किसी का तो केवल भोजन के इर्द गिर्द में ही रह जाता है। सबसे नीचे का है काम का, उसके ऊपर का भोजन का, उसके ऊपर का सत्ता का। ये तीन चक्र है, ये चक्रों से बाहर निकलना है। यहां पहुंचेंगे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यहां प्रेम का चक्र है, यहां व्यक्ति सोचता है समाज सेवा करूं। यहां उसके अंदर अब काम विकार नहीं है, सत्ता का लोभ नहीं है, सोचता है दूसरों की मदद करूं, दूसरों का कल्याण करूं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क करूं, सोशल सर्विस करूं। ये यहां तक पहुंच गया। उसके ये अनाथ चक्र, यहां पर उसके आगे विशुद्ध चक्र गले में, यहां है ज्ञान की जिज्ञासा जागती है उसमें। सत्य क्या है जीवन का, समाज सेवा बहुत कर ली पर फिर भी अतृप्ति है। अब उसको लगता है और सत्य क्या है जीवन का, यहां पहुंचता है वो। फिर आज्ञा चक्र, यहां से उसकी आध्यात्मिक जीवन जैसे चालू हो गया। और लास्ट सहस्त्रार चक्र, ये सारे चक्रों का खुलना अर्थात एक एक विकार से मुक्ति। हम क्या कह रहे हैं, आत्मा में ही सारे विकार, तो यहीं पे आत्मा का निर्विकारी होना अर्थात कुंडलिनी जागरण, आत्मा का निर्विकारी होना अर्थात सारे चक्रों का खुल जाना, एक प्राणिक फ्लो स्टैब्लिश हो जाएगा, सारे विकार शरीर के मन के सब विकार मुक्त हो गए। बाप समान अवस्था अर्थात कुंडलिनी जागरण, स्वदर्शन चक्रधारी अवस्था में पहुंच गए। तो यही यहां पे भी क्या है, लोटस चक्र अर्थात लोटस। अगला कितने हो गए, 13। ये आसन का हमने लिया नहीं है, एंडेमिक डायस मतलब कॉमन आसन है ये बैठने का, जैसे ब्रह्मा का, लक्ष्मी का, और विदेश के कुछ देवी देवता है वो भी इसी पर विराजमान होते, उनको इसके लिए अलग अलग नाम दिए उन्होंने। एंडेमिक आसन डायस, कॉमन डायस है ये, व्यासपीठ कॉमन सबके लिए, सबने अपना अपना चुना है, रंग अलग अलग होंगे पर बैठने का स्थान उसमें। और एक पद्मासन, योगियों की वो तपस्या करते किसमें करते, पद्म, पद्मासन में, उसका अपना एक महत्व है। वैसे सुखासन में बैठो परंतु पद्मासन में बैठने का अपना एक महत्व है। तो आसन, बैठने का आसन, ये भी कमल। अगला और क्या हो सकता है दूसरा, कमल जो होते हैं ना, कमल एक साथ रहते हैं, परिवार में रहते हैं, जुड़ के रहते हैं, अकेला कमल नहीं रहता है, उसके साथ रहते हैं। तो कमल अर्थात, कमल अर्थात फैमिली, कमल अर्थात यूनिटी। तो पहला ये ले लेते हैं, कमल अर्थात एक फैमिली, सबके साथ रहना, कमल पुष्प समान जीवन जीना अर्थात गृहस्थी अर्थात सबको साथ लेके चलते हुए जी रहे, एकता, कमल अर्थात एकता। अगला और क्या बताया, जड़े अंदर जाती है और नहीं वो अलग, कुमार करे कमाल, हाँ एक मुरली में यही है, कमल वही बन सकते हैं जो अमल कर सकते हैं। कमल कलम देखते हो तो क्या सोचो, हम कमल आसन पर बैठे हुए, चलो ये भी है एक मुरली पूरी इस पर भी है, अमल करो तो कमल बनेंगे, जब तक अमल नहीं करेंगे कमल भी नहीं बनेंगे। और कमल के विषय में अभी अभी सोचो, बीज और फूल एक साथ होते हैं, ऐसा भी है ना, बीज और फूल एक साथ होते हैं। तो ये बीज और फूल क्या है, ये चेतना की अवस्था है आगे आगे बढ़ने की। और वो तो हो गया ना, डिटैचमेंट और वो कमल पुष्प समान स्थिति, वो तो दोनों में आ गया। और हाँ ये एक लास्ट है कि कमल की हर चीज का कुछ ना कुछ यूज होता है, प्रयोग होता है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है उसका, मेडिसिनल वैल्यू है उसकी, दवाइयां। मखाने, कमल इस सृष्टि का भी एक चिन्ह है, अंदर का चिन्ह और बाहर का, मैक्रोकॉजम और माइक्रोकॉजम, ये सारी सृष्टि है वो कहते हैं कमल में समाई हुई है। दूसरा, कमल फेथ का ये है, फर्टिलिटी, फेथ, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी अर्थात समृद्धि का प्रतीक है, फेथ अर्थात निश्चय, निश्चय का भी प्रतीक है। उसका निश्चय देखो कितना है, कहाँ उग रहा है वो, कीचड़ में, परंतु निश्चय है। और ये कितना आश्चर्य है, कहाँ से क्या बन रहा है, कीचड़, और बन क्या रहा है, कमल, बदबू है और खुशबू, कितना आश्चर्य है। तो ये फेथ, उसका जो निश्चय है, कमल अर्थात निश्चय। तो इतनी सब बातें फिर से एक बार रिवाइज करते हैं शुरुआत से। पहले तो एक एक नाम लेना है और इस नाम पर योग का प्रयोग करना है, उस पर काम करना है। मैं नीरज हूँ, मैं अरविंद हूँ, मैं पंकज हूँ, पंकज भाई, नीरज भाई, अरविंद भाई, सरोज बहन, और कौन नलिनी बहन नलिन बहन तो ये सारे उसके नाम है, मैं वो हूँ। दूसरा, स्थिति, कमल अर्थात मेरी स्थिति कमल समान है, कोई भी कर्मेंद्रियों का आकर्षण नहीं, आंखें कमल समान, हस्त कमल समान, नाक कमल समान, कान कमल समान, मुख कमल समान, पैर कमल समान, हृदय कमल समान, हृदय भी कमल समान। अगला, ये दूसरा। तीसरा, हम ऊपर, परिस्थितियां नीचे। अगला, मैं हल्का हूं, कमल समान हल्का हूं, कोई चीज मुझे भारी नहीं कर सकती है, हर चीज क्या है, कॉमेडी शो। अष्टमंगल, उसके बाद में अष्टमंगलकारी चिन्ह है ये कमल। अगला, डिवाइन ब्यूटी है, ये सौंदर्य का प्रतीक है। उसके बाद में अलग अलग रंग के कमल, अलग अलग रंग पर चित्र निकाल सकते हैं निखिलेश भाई, लाल, पीला, नीला, अलग अलग रंग के कमल, और उस पर काम करना है। अब ये काम और दे रहे सबको, आज से सभी स्केचिंग चालू करेंगे। पेंटिंग आगे की स्टेज है, पहले स्केच, रोज की मुरली से एक स्केच हरेक को बनाना है। ड्राइंग, पेंसिल, पेंसिल स्केच, ज्यादा हाईफाई नहीं, सिंपल वाले स्केचिंग, उसके लिए शुरुआत कहीं से भी कर सकते, पहले कार्टून से कर सकते, ऐसा स्केच बनाया, फिर दो आंखें डाली उसको, ये बन गया तो रोज स्केचिंग हरेक को करना है, ये क्रिएटिविटी है। क्योंकि हम कहते हैं नवीनता नवीनता नवीनता, तो कौन सी नवीनता लाएंगे, आज की मुरली से हरेक को स्केच, रोज की मुरली से एक स्केच बनाना है। और पेंसिल स्केच, कलर का यूज नहीं करना है, पेन का यूज नहीं करना, जिनके पास पेंसिल नहीं हो पहले पेंसिल खरीद ले, रबर खरीद ले बस, और रबर का प्रयोग कम से कम करना है, रबर का प्रयोग कम से कम। अगर कोई भी तकलीफ हो, समस्या हो, तो गुरु जी बैठे हैं अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कैसे करे, तो गाइडेंस ले सकते हैं, निखिलेश भाई बैठे हैं। तो ये बहुत अच्छा काम है, आज से सबको चालू करना है। पहले ड्राइंग बुक खरीद लो एक, स्कूल के बचपन में चले जाना है, बचपन के दिन, तो ड्राइंग बुक होती है ना, या तो ड्राइंग बुक नहीं तो पेपर्स ले लो, प्रिंटिंग पेपर्स, प्रिंटिंग पेपर्स वाले, वो पेपर लेके एक स्केच बनाना है, आज की डेट डालनी है, नीचे अपनी साइन, थोड़ा सा स्टाइल भी तो चाहिए माता है बच्चों का ले सकती, पर एक स्केच रोज बनाना है। अगला, ये अच्छा बनाओ ना अगला, नेक्स्ट, डिटैच्ड, अगला, रिबर्थ, अगला, सूरज, अगला, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, खिलना और बंद हो जाना, अगला, आत्मा का विस्तार, आत्मा का आगे बढ़ना, आत्मा का जागरण, अगला, चक्र, ये सारे चक्र हमारे ऐसा योग में बैठना है, सोचना ये सारे चक्र, और नीचे से चालू करना, ये चक्र खुल गया, अब मैं भोजन पर विजयी हूं, फूड फ्रीडम, अब मैं काम विकार पर फ्री हूं, लस्ट फ्रीडम, अगला, सत्ता, सत्ता की पावर की अभी मुझे कोई अभिप्सा नहीं है, पावर फ्रीडम, एक 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 से फ्री होके एक एक चक्र खुला, उस पर काम करना है, यहां पर पूरा ध्यान वहां लगाना है, वो चक्र खुल गया, आगे अगला चक्र, अगला चक्र, खिल ऊपर 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 आना है, फिर यहां तक पहुंचना है, मैं आत्मा हूं, फिर ये खुला, फिर ये खुल गया, यहां से सीधा अभी परमधाम वो क्या कहते हैं उसको, कपाल, 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 मराठी में शब्द है एक, कपाल, कपाल, वो मृत्यु के लिए क्या शब्द है, कपाल,
कपाल, कपाल मोक्ष, यस दिस इज द वर्ड, मराठी में शब्द है कपाल मोक्ष. तो यहां तक आना और यहां से सीधा कपाल मोक्ष. अगला आसन है, अगला फैमिली, अगला फेथ, अगला प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, ये आगे की शब्द है, 16 हो गए. अगला यूजफुल, सब उसका प्रयोग में आता है, तो हमारा जीवन भी हर जगह प्रयोग में आए, कुछ भी हमारा वेस्ट ना हो. ओम शांति.